संत नाभादास जी द्वारा लिखी हुई भक्तों की जीवन गाथा भक्तमाल, जिन्हें सरल भाषा में आप तक पहुंचा रहे हैं हमारे अपने प्रभु जी के परम भक्त अरविंद चौधरी जी।
राधे राधे। राधे राधे। भक्तमाल श्रृंखला में श्री नामदेव जी के चरित्र का ये नेक्स्ट पार्ट है। हरि से जुग वस्तु नहीं, प्रेम पंथ सो पंथ, सदगुरु सो सज्जन नहीं, भक्तमाल सो ग्रंथ। श्री भक्तमाल की जय। भक्तमाल के सभी भक्तों संतों वैष्णवों की जय। श्री हरि की जय। राधे राधे। तो नामदेव जी सभी चर अचर में भगवान को देख रहे हैं, भगवान चर अचर में प्रकट हो रहे हैं उनके सामने। एक समय एक मुसलमान पठान का वेश धर के भगवान घोड़े पर सवार होकर आए और नामदेव जी कहीं पे चल रहे थे, तो उनको इशारा किया कि मेरा भार है ये अपने सर पे रखो और मेरे पीछे पीछे दौड़ो। घोड़े पे उस स्वयं चल रहे हैं, उनकी गठरी बड़ी भारी भार की है, इनके नामदेव जी के सर पे रख दी और ये पीछे पीछे दौड़ रहे हैं उनके, और घोड़ा लेके वो दौड़ रहे हैं। अद्भुत बात थी। इधर कबीरदास जी ने देखा, कबीरदास जी इनसे मिलने आया करते थे, इन्हें देखा तो कबीर जी भी दौड़ रहे हैं पीछे। अरे बोल रहे हैं, अरे कौन है ये? तो ये बोले ये श्री हरि है, विट्ठल भगवान है। बोले अरे ये तो पठान है, ये तुम और तुम्हारे सर पे भार रख दे, इसे शर्म नहीं आ रही है? भगवान बार बार परीक्षा लेते थे, लेकिन ये पठान में भी भगवान को देख रहे थे, इनकी निष्ठा चेक कर रहे थे भगवान। क्या इनके मन में ये आएगा कि भार रख के, यार भगवान भी हैं तो क्या भार रख के सिर पे दौड़ाएंगे? कि इनके मन में तो आ जाए, लेकिन उनके मन में, क्योंकि भगवान जो आज्ञा दे रहे हम करेंगे, भगवान ने जो आज्ञा दी है वही करेंगे, और वो पठान मुसलमान का वेश धर के आज्ञा दे रहे हैं, फिर भी इनके मन में कुछ नहीं आ रही है। कोई राह चलता हुआ आदमी हमें कुछ काम बोल दे ऐसा कि ये मेरा काम कर दे, तो हम वैसे ही नहीं करते हैं कि क्या तू खुद कर ले। लेकिन वो खुद घोड़े पे सवार है, घोड़े पे वजन रख सकता था, और इन्हें घोड़े सवा रख करके इनको दौड़ाया जा रहा है, मन बिगड़ जाएगा ना। तो ऐसी ऐसी ही परीक्षा भगवान ले रहे हैं, ये उनको भगवान समझ रहे हैं, भगवान समझ रहे। तो भगवान ने भी इनको प्रत्यक्ष प्रकट होकर कबीरदास जी के साथ फिर दर्शन दिए। बोले तुम्हारी निष्ठा कमाल की है नामदेव जी। तो नामदेव जी अपनी हर निष्ठा पे खरे उतर रहे, लेकिन इनका हृदय इतना पवित्र है, इतना निर्मल है, कि एक बार की घटना है, इनकी माँ को वृक्ष की छाल की आवश्यकता थी, जो ऊपर की छाल होती है ना वृक्ष की, वो दवाई बनाने के लिए। उन्होंने कहा वृक्ष की छाल चाहिए, तो इन्होंने वृक्ष की छाल ला के दे दी। लेकिन जी वृक्ष की छाल लेके अपनी माँ को दी दवाई बनाने के लिए, तो इनको बड़ी पीड़ा हुई कि उस वृक्ष को भी पीड़ा हुई होगी जब मैंने छाल निकाली है। तो इन्होंने क्या किया, अपनी टांग पे वही कुल्हाड़ी से अपनी टांग की ऊपर की खाल छील दी। इन्होंने खाल छील दी तो ये चलते हुए इनकी धोती खून में सन गई। तो इनकी माँ ने देखा कि ये क्या हुआ है, पहले तो बताया नहीं उन्होंने। जब उन्होंने पूछा नहीं बता क्या हुआ है, तो इन्होंने बताया कि माँ उस वृक्ष की जब छाल छीली गई थी तो उसको भी तो कष्ट हुआ होगा ना, तो मैं देखना चाह रहा था कि कितना कष्ट होता है जब खाल छिलती है। मेरी खाल छिली है, उसकी छाल छिली है, एक ही है ना। तो माँ ने इसका सर अपनी गोद में लेकर कहा सही में तू बहुत बड़ा संत है रे, बहुत बड़ा संत बनेगा तू, और वही वास्तविकता है। तो जिनका हृदय ऐसा निर्मल और कोमल होता है कि वो वृक्ष का भी दुख नहीं सहन कर पाते, तो वो तो भगवान के इतने नज़दीक होंगे। एक बार एक सेठ जी थे, वो उन्होंने एक बहुत बड़ा यज्ञ करवाया और वो सबको दक्षिणा दे रहे थे, बहुत धनवान थे सेठ जी, सबको दक्षिणा दे रहे थे पंडरपुर में, सबको उन्होंने दक्षिणा बांटी, तो रह गए सिर्फ नामदेव जी। इनको कई बार बुलवाया उन्होंने, ये नहीं गए दक्षिणा लेने। फिर वो स्वयं आए, इनसे कहा कि कुछ दक्षिणा ले लो महाराज, नगर में मैंने कोई आदमी कोई व्यक्ति नहीं छोड़ा है जिसको दक्षिणा नहीं दी, कुछ तो ले लो, और मेरे यहाँ भंडार भरे हैं, आप एक बार कह दो क्या चाहिए आपको। इन्होंने मना किया, नहीं भैया हमें कुछ चाहिए नहीं, हम तो भगवान से नहीं लेते हैं, हम कुछ मांगते हैं तुमसे क्या मांगेंगे। उसने बहुत जिद की, नहीं महाराज मेरी लाज रखने के लिए मेरा यज्ञ पूर्ण हो जाएगा, मेरी शपथ है कि कोई व्यक्ति ना बचे, कुछ तो ले लो। और उसने ये भी कह दिया कि धन की कमी नहीं है महाराज, इतना ले लेना कि दोबारा कहीं मांगने की आवश्यकता ना पड़े। अगर वो प्रार्थना दीनता से करता तो शायद ये मतलब कुछ मीन के भाव वैसे आते, पर उसने आखिर में ये लाइन कह दी जब ये लेने को थोड़ा तैयार हुए उसकी उस पे कि महाराज मेरा यज्ञ पूर्ण हो जाएगा, उसने कहता लेकिन महाराज इतना मांग लेना कि दोबारा कहीं कहीं से मांगने की आवश्यकता ना पड़े। ये लाइन जो बोली, वो बोले ठीक है तो फिर हम इतना ही लेंगे आपसे। इन्होंने तुलसी पत्र लिया एक, उस पे आधा नाम लिखा राम, रा लिखा, म भी नहीं लिखा, आधा रा लिखा तुलसी पत्र पे, और कहा इसके बदले हमें एक सोना तोल के दे दीजिए आप, जो सोना दे रहा वो ठाका मार के ऐसा कि मतलब शर्म नहीं आई, मतलब तुम्हें सही में तुम गरीब आदमी हो, गरीब आदमी को पता नहीं होता क्या ले, अरे इसके बदले में कितना सोना आएगा। वो बोला तुम लेके तो आओ इसके बदले में, तुम्हें पता चलेगा कितना आएगा, जाओ। तो उसने छोटी सी एक तराजू पे रखा, उसमें छोटा सा एक सोने का वो रखा कि हो जाएगा, नहीं हुआ तो तुलसी पत्र नीचे। फिर उसने और रखा, उसके बराबर नहीं हुआ, उसने वो तराजू फेल होगी, वो 3-4 किलो की होगी, उसने बड़ी तराजू मंगवाई। यहाँ तक कि ये हो गया कि उसने अपना सारा तोना, बड़ी बड़ी उसने तराजू मंगवाई और उसका सारा सोना जितना उसने भ्रम था सब तोल लिया, कुछ ना हुआ। उसके घर के सारे लोग परेशान हो गए, तुलसी पत्र पर राह लिखा हुआ वो नहीं तुल रहा है आज। यहीं पे एक दृष्टांत श्रीमद् भागवत जी का है कि सत्यभामा और रुक्मणी और श्री कृष्ण जी का, कि एक बार रुक्मणी जी को जब भगवान श्री कृष्ण जी ने एक नारद जी गए हुए थे तो एक पारिजात का पुष्प उन्होंने भेंट किया था, तो पारिजात का पुष्प जब रुक्मणी जी के पास सत्यभामा ने देखा तो उन्होंने भगवान से लड़ाई करी, कह रहे मतलब उनको तो तुमने ये दिया, मुझे तो पूरा वृक्ष चाहिए पारिजात का। ये तब की बात है, भौमासुर ने इंद्र के साथ युद्ध करके उनको भगा दिया था, परेशान हो गए थे। इंद्र भगवान श्री कृष्ण जी के पास आए थे कि भौमासुर को मार दो, भौमासुर को वरदान था कि पृथ्वी जब तक नहीं कहेगी तब तक भगवान कोई उसे मार नहीं सकता है। पृथ्वी के अवतार थी सत्यभामा जी, तो भगवान श्री कृष्ण जी सत्यभामा जी को लेकर युद्ध करते हैं। सत्यभामा जी युद्ध में कहती हैं भगवान श्री कृष्ण जी को मार मार दो इसे, तो वो उसे ख़त्म कर देते हैं। ख़त्म कर देते हैं तो वो स्वर्ग में जाते हैं, इनका श्री कृष्ण जी सब अभिनंदन करते हैं, तो वहाँ से वो पारिजात का एक पुष्प ले आते हैं, वो पुष्प देते हैं भगवान रुक्मणी जी को। तो रुक्मणी जी पे वो पुष्प देखती हैं तो ये बोलती हैं कि तुम उनको तो पुष्प दिया है तुमने, मुझे पूरा पारिजात चाहिए जो स्वर्ग में है। तो भगवान इंद्र से बोलते हैं, संदेश भेजते हैं कि पारिजात का वृक्ष दे दो। वहाँ वो शची जी से बोलते हैं, इंद्राणी से, वो मना कर देते हैं, नहीं ये कोई धरती के लोगों के लिए थोड़ा ना है, स्वर्ग के लोग, वो भगवान को धरती का लोग मान रही है, भगवान का धाम तो नित्य है, वो उसको कुछ समझ नहीं रही हैं वो लोग, और अभी उनकी मदद करी है, स्वर्ग दिया है उनको ला के, नहीं तो स्वर्ग ही वो भौमासुर के हवाले था। तो भगवान को देखा कि अच्छा तुम्हारा भी अहंकार हो गया, तुम्हारे भी अहंकार तोड़ते हैं और सत्यभामा का भी, तो भगवान ने उसको हरा करके मूर्छित करके पारिजात का वृक्ष गरुड़ जी पे रख के वो ले आए। ले आए जब पारिजात का वृक्ष आया तो नारद जी ने सत्यभामा को कहा कि तुम क्यों ना, ये पारिजात का वृक्ष आ गया है तो व्रत करो, ऐसा व्रत कि जिससे भगवान हमेशा हमेशा के लिए हर जन्म में तुम्हारे पति बने, तुम्हारे लिए कुछ भी कर देते हैं ना, यही तुम्हें अगर जन्म लेना पड़े यही पति मिले। वो बोले हाँ ये तो बड़ा अच्छा है नारद जी, करा दो। बोला इस व्रत में ये होगा कि अपनी सबसे प्यारी वस्तु दान करनी पड़ेगी। बोले कर देंगे, दान की कोई दिक्कत नहीं है, संकल्प करवा लिया। बोला सबसे प्यारी वस्तु क्या है तुम्हारी? वो बोली कि जब उसने ध्यान आया सबसे प्यारी, तो सबसे प्यारी तो मुझे कृष्ण है। बोले तो कृष्ण को दान कर दो। सोचने लगे कृष्ण को दान करो, नारद जी ने कहा अरे बदले में फिर दे देते हैं, लेने देने वाले आदमी हैं हम तो इनके बदले में कुछ भी धन दक्षिणा ले लेंगे और क्या, छोड़ देंगे इन्हें। बोले हाँ ठीक है ले लो कृष्ण को। उन्होंने संकल्प करा, कृष्ण को दान कर दिया। नारद जी ने कहा कृष्ण को चलो मेरे साथ। वो तो नारद जी की और श्री कृष्ण जी की चाल थी, उन्होंने नारद जी का तंबूरा पकड़ा और लेके चल दिए वो तो श्री कृष्ण जी को। ये सब रानियाँ देखती रहेगी क्या कर रहे हो ये। तो उन्होंने भगवान श्री कृष्ण जी से प्रार्थना की, महाराज ऐसा मत बोले, नहीं हम तो इनके हो चुके हैं, हम तो इनके साथ जाएंगे। नारद जी से कहा इनके बदले में कुछ ले लो। बोले इनके बदले में क्या आता है, ये ब्रह्मांडपति हैं, अनंत ब्रह्मांडों के स्वामी, इनके बदले में कुछ आता है? वो चुप हो गई, भी क्या आता है। सोचने लगी क्या दे सकती हो तुम इनके बदले में। बोला इनके बदले में उनका अहंकार फिर जाग उठा सत्यभामा का, इनके बदले में हम कितना भी सोना दे सकते हैं, कितना भी। वो कहने लगे अच्छा इनके बदले में सोना दोगे, ठीक है। तो बोले बैठाओ श्री कृष्ण जी को, तोल दो सोना। भगवान श्री कृष्ण जी को बैठाया, पूरे महल का सोना रख लिया तराजू पे, कुछ ना हुआ, वो हिला तक नहीं है। फिर जब वो सब हार गई, कुछ नहीं, रोने लगी सत्यभामा की, मेरे पति गए क्या करें क्या करें। फिर रुक्मणी जी ने उनको एक तुलसी पत्र दिया था, तुलसी पत्र पे उन्होंने भगवान का नाम लिख के दिया था कि ये रख दो और प्रार्थना करो इनसे कि दोबारा हमारे तो मतलब आपको कोई नहीं तोल सकता, भाव रखो अपने कि भगवान हमें क्षमा कर देना, वहाँ अहंकार हुआ है। वो रख के उन्होंने रखा तो भगवान उठ गए। तो वही तुलसी पत्र यहाँ है, सारा धन इनका तुल गया है, कुछ नहीं बचा है। और फिर नामदेव जी ने कहा तुम्हारे जितने तुमने पुण्य किए हैं ना, पहले भी यज्ञ किए हैं तुमने, तीर्थ स्नान किए, तीर्थ यात्राएं की हैं सारे परिवार ने, वो सारा संकल्प कर पे रख लो, पुण्य का भी प्रभाव देख लेते हैं तुम्हारे, वो सब भी रख लिया फिर भी नहीं उठा। बोला ये तुलसी के आधे पत्र पे भगवान का आधा नाम लिखा हुआ है, ये ना उठ रहा है तुम्हारे सारे अब तक के सारे कर्मों से, सारे धन से, तो समझ गए तुम मैं कितना पानी। वो बड़े लज्जित हुए कि हम किसको हम दान दक्षिणा देने वाले चले थे, नामदेव जी को, जिनके सामने मतलब भगवान ऐसे रहते हैं उनको हम ये दे रहे थे। तब उन्होंने वहाँ पे महिमा दिखाई भगवान नाम की, कि भगवान के आधे नाम की भी महिमा ऐसी है, तुम्हारे सारे कई जन्मों के तुम्हारे पुण्य भी एकत्रित हो जाएं तो भी भगवान नाम को नहीं उठा सकते हैं, भगवान की शक्ति वो है। उन्होंने फिर क्षमा मांगी और उनसे कहा कि हमारा यज्ञ पूर्ण करवाओ। उन्होंने यज्ञ पूर्ण करा, दान दक्षिणा दे के उनको फिर विदा करवाया सबको। नामदेव जी ने यज्ञ पूर्ण कराया उनका, सेठ जी का। तो ऐसी भगवान की अनंत कथाएं, अनंत महिमा है भगवान श्री कृष्ण जी की, भगवान नारायण की। एक बार और किसी ने ऐसा ही किया था कि कोई गरीब आदमी था, वो इनके पास में आया कि हमारी कन्या की शादी में एक वो छोटी सी थैली लेके आया, उसमें थोड़े से पैसे थे। बोलने लगा हमारी कन्या का विवाह है और इसमें इतने ही पैसे हैं, बस इससे कैसे होगा, और सर पे आ गया, कहीं से पैसा नहीं मिल रहा। नामदेव जी ने वो थैली हाथ में ली, स्पर्श करी और वो वापस कर दी, बोला जाए ख़त्म नहीं होगा। उसने सही में सारा पैसा खर्च किया लड़की के, इसमें से निकालते बोला देखना नहीं, इसमें से निकालता रहा, खर्च करता रहा। तो जब सब कुछ हो गया, वहाँ बाराती बाराती आए तो सब ने कहा कि जी अच्छा नामदेव जी आपकी तरफ से तो कुछ होना चाहिए। तो उन्होंने भगवान का स्मरण किया, तो ये बताते हैं कि भगवान का स्मरण करते ही वहाँ पे स्वर्ण मुद्राओं की बारिश हुई। जैसे नरसिंह मेहता की बात में स्वर्ण मुद्राओं की बारिश हुई थी, ऐसे ही बारिश हुई। कुछ क्षण तक वो बारिश हुई, सबने देखा साक्षात इनका चमत्कार। तो ऐसे ही थे। एक बार यही बारात में किसी गए हुए थे, ये लौट रहे थे, लौटते हुए जंगल में जब ठहरे तो वहाँ पे कोई यवन थे, मतलब कुछ मुस्लिम वो लोग थे, उन्होंने किसी किरेलिए को देखा, गिरगिट को, वो देखते ही वो मारने दौड़े। तो इन्होंने रोका, रहे नहीं 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 नहीं, मारते नहीं है, मारते नहीं है। वो मान नहीं रहे थे, बोला हम तो मारेंगे इसको, गिरगिट को देखते ही वो अशुभ समझते होंगे, कुछ भी है, वो मारने दौड़े। तो इन्होंने वहाँ प्रभाव दिखाया, इन्होंने भगवान को याद किया, वहाँ अनंत गिरगिट पैदा हो गए बड़े बड़े, और उनको वो काटने दौड़े बड़े भयंकर। वो नामदेव जी की शरण में आए तब वो बचे। तो ऐसे नामदेव जी के अनंत चरित्र हैं। और इनकी एक नामदेव जी की ही एक दासी थी जनाबाई। जनाबाई भगवान नाम, जैसे वो इनसे देखती थी कि भगवान नाम में कितना विश्वास है इनका, कैसे नाम रटते हैं। तो वो विट्ठल 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 विट्ठल, इनके घर में जो भी काम करती थी विट्ठल विट्ठल विट्ठल, जो इनके कपड़े, वो इन्हीं की सेवा किया करती थी। तो कपड़े धोना, साफ़ सफाई, भगवान की सेवा के लिए जल लेके आना, भगवान के लिए पत्र पुष्प, सब हर चीज़ का वही काम किया करती थी जनाबाई। उसका ठाकुर जी में इतना विश्वास था तो विट्ठल 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 करती थी। उसके साथ घर की जो चक्की में आटा पीसा जाता है तो विट्ठल विट्ठल करके पीसती थी। ये बताते हैं कि कभी कभी जब उसे लगता था कि इनकी सेवा का टाइम हो गया है, मुझे उठ के इनकी सेवा करनी है, तो भगवान उसका आटा पीस दिया करते थे। जब उसे लगता था, वो दौड़ती थी बेचारी, बहुत काम रहता था उसको, तो वो काम करके कि नामदेव जी का ये काम रह गया, नामदेव जी को कष्ट ना हो जाए, उसके मन में ये रहता था विट्ठल विट्ठल करते। जब तक वो आती थी कपड़े धुले मिलते थे, तो भगवान नारायण स्वयं उसका काम करते रहते थे। ये भगवान की ऐसी एक कबीरदास जी को उसके बारे में सुनाई दिया। कबीरदास जी उसका दर्शन करने के लिए चल पड़े। कबीरदास जी आए तो ये बताते हैं कि जब वो पहुँचे तो जनाबाई अपनी किसी पड़ोसन के साथ लड़ रही थी, उपले पे जो कंडे होते हैं उन पे, गोबर के कंडे वो थापे हुए थे उसने, उन पे लड़ाई हो रही कि ये मेरा ये मेरा। कबीरदास जी को बड़ा इनके बारे में सुना था, बोले अरे ये जनाबाई है, इतनी बड़ी भक्ता है कि एक कंडे पे लड़ रही है। उन्होंने कबीरदास जी ने पूछा कि ये कंडे तुम्हें कैसे पता है तुम्हारा है। उसने कहा महाराज इसमें आप नाम, इसको आप हाथ में ले गए कान के लगाओ तो आपको पता चलेगा। उन्होंने लगा, देखा सही में उसमें आवाज़ आ रही है, विट्ठल 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 की ध्वनि प्रकट हो रही है उसमें। वो बोले मेरे जितने भी कंडे हो गए सब में विट्ठल की ध्वनि आएगी, इसके कंडे उठा के देख लो। कबीरदास जी मान गए, हो जिसके हाथ से स्पर्श होते ही भगवान नाम चलना शुरू हो जाए, निर्जीव वस्तु में भी भगवान नाम चलना शुरू हो जाए। तो ऐसे भगवान के भक्त होते हैं। तो अगला पार्ट जो हम नामदेव जी के चरित्र का करेंगे, उसे संपूर्ण करेंगे, उसमें नामदेव जी कैसे भगवत धाम गए और उनके एक और भक्त थे, शिष्य थे चोखामेला जी। चोखामेला जी की भी हड्डियों से कैसे राम नाम की आवाज़ आती थी भगवान नाम की, ये हम अगला संपूर्ण करते हैं। तो यहीं पे विराम लेते हैं। राधे राधे।
ऑडियो पिटारा सुनना जरूरी है।